हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 मांडूक्य उपनिषद पर विचार चल रहा है। उपनिषदों का जो नामकरण हुआ है वो या तो ऋषियों के नाम पर है और या तो उनमें आए हुए मंत्रों के प्रथम अक्षरों के नाम पर है। जैसे ईशावास्य उपनिषद है तो उसका पहला मंत्र ईशा से ही शुरू होता है, ईशावास्यम, इसलिए उसका नाम ईशावास्य है। केन उपनिषद का पहला मंत्र केन से ही शुरू होता है, इसलिए उसका नाम केन उपनिषद है। मुंडक उपनिषद का नाम यद्यपि ऋषि तो उसमें कोई मुंडक नहीं है, लेकिन उसमें जो साधना है वो सिर पर शिरो साधना है, उसमें अग्नि का स्थापन सिर के ऊपर करके और तब गुरु जी की शरण में जाते हैं। महाराज जी तो खैर कई अर्थ कर ही देते थे, बोले जब तक मुंड नहीं मुड़ाओगे तब तक मुंडक उपनिषद समझ में नहीं आए, तो इसलिए उसका नाम मुंडक उपनिषद है। और मांडुक्य उपनिषद जो है वो मांडुक नाम के ऋषि के ऊपर है, उनके द्वारा बताया हुआ होने से मांडुक्य उपनिषद कहलाता है। एक और अर्थ भी है, मंडूक कहते हैं फ्रॉग, क्या है मेंढक, तो मेंढक जैसे उछल उछल के चलता है, ऐसे ही जो इसमें ये चार पाद बताए हैं तो पहले पाद में उछलो फिर उसको छोड़ करके दूसरे पाद में उछलो फिर तीसरे पाद में उछलो फिर तीनों को छोड़ करके चतुर्थ पाद में उछलो, तो ये लक्षणा करके भी इसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो शेक्सपियर की बात मान लो, व्हाट इज देयर इन ए नेम, नाम में क्या है, कोई भी नाम रख दो किसी का। तो मांडुक उपनिषद में बात यहां तक पहुंची कि ओंकार की साधना करके मनुष्य को अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, वृत्तियों को अंतर्मुख करना चाहिए और सब ओंकार ही है, सब ब्रह्म ही है, ये आत्मा भी ओंकार स्वरूप है, ये आत्मा भी ब्रह्म ही है, ऐसा भाव करना चाहिए। ये अंत में तो ज्ञान होता है इसका, लेकिन जिस जो चीज ज्ञान में आएगी उसका पहले भाव करके उसमें बैठना है, तो उससे क्या है कि भूमिका तैयार हो जाती है। अब ये कैसे हम इस ब्रह्म भाव में प्राप्त हों, तो उसके लिए ये चार पाद स्वयं आत्मा चतुष्पाद। स माने वो ब्रह्म और आत्मा माने ये मैं, ये चार पैर वाला है, माने चार चरणों में इसका ज्ञान होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि पहला चरण उठाओ और जागृत अवस्था में रखो। जागृत में तो है, लेकिन जागृत अवस्था में रखो जैसा उपनिषद बताता है। हम जागृत अवस्था में ही हैं, ये तो ठीक है, बुद्धि जाग रही है इस समय, लेकिन कैसे हम इसको ब्रह्म की तरफ को मोड़े जागृत अवस्था को, तो इसके लिए ये बात बताइए कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथम पाद। ये सात विभाग करके समझो कि हम इसमें बैठे हुए हैं। मैं कहा हूं कि जागृत स्थान वाला हूं। अब यहां तीन विभाग कर लेने चाहिए। मैं जागृत स्थान वाला हूं तो जागृत में तीन विभाग कर लेने चाहिए। एक तो ये व्यक्ति है जो बोल रहा है, चल रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और एक इसका अभिमानी है और आप जो कर रहे हो उसको देख रहा हूं, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये यो हो रहा है। पूरे जागृत अवस्था का भी अभिमानी हूं मैं, अपने एक शरीर का भी अभिमानी हूं और अपनी पूरी जागृत अवस्था का भी अभिमानी हूं। और एक वो मैं है जो इसको भी देख, व्यक्ति को भी देख रहा है, समष्टि को भी देख रहा है, अच्छे को भी देख रहा है, बुरे को भी देख रहा है, लेकिन किसी में इंटरफियर नहीं करता, उसको साक्षी बोलते हैं। तो एक मैं हो गया कर्ता और एक मैं हो गया अभिमानी और एक मैं हो गया साक्षी। मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ना आई हो तो स्वप्न के दृष्टांत से ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। जैसे हम तो चारपाई पे पड़ गए, अब हमने सपने में देखा कि हम कुंभ में जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने कुंभ का उदाहरण दिया, बोले हम कुंभ में जा रहे हैं और वहां बहुत भीड़ है, गंगा जी हैं, महात्मा है, तो वो जो नहाने के लिए कुंभ में जा रहा है व्यक्ति सपने में, एक तो वो व्यक्ति है, वो भी मैं ही हूं, मैं जा रहा हूं सपने में, और एक पूरे सपने में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके कह रहा हूं कि भाई मैंने आज कुंभ के दर्शन कर लिए, बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। और एक ये हुआ कि सब कुछ देखा और कुछ भी नहीं देखा, माने साक्षी। 13वें अध्याय का श्लोक याद कर लो, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो इतनी बात, उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है, भोक्ता भी है, और बाकी महेश्वर परमात्मा की बात अभी छोड़ दो। तो इनके पारिभाषिक नाम दे दिए गए हैं। जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं जागृत पुरुष, जो मैं ये अपने आप को मान रहा हूं इस समय कार्य करते समय, जागृत पुरुष। और एक है जागृताभिमानी, पूरी जागृत अवस्था का अभिमानी, मैंने बंबई देखी, मैंने वृंदावन देखा, मैंने फलाना न्यूयॉर्क देखा, ये देखा, सारी दुनिया में घूम लिया उसको, तो ये पूरी जागृत अवस्था का अभिमानी बोल रहा है। और इस समय जो मैं ये कर रहा हूं या पहले किए हुए का भोग रहा हूं, कर्ता भोक्ता जो है ये जागृत पुरुष है। तो जागृत पुरुष और पूरी जागृत अवस्था का अभिमानी और एक साक्षी है। तो साक्षी जो है वो इन दोनों का को भी जानता है और इनके विषयों को भी जानता है और किसी में भी अपना अहम स्थापित नहीं करता। अब आप विचार करो कि मैं कौन हूं इन तीनों में से। तो बोले ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं, ऐसे ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि नकार तो किसी को सकते नहीं। तो बोले भी जिसमें लग गया इसका मतलब यह है कि वो गौण है। मुख्य कौन सा हुआ? अगर साक्षी ना हो तो ना एक शरीर के व्यापार को जानेगा, ना समष्टि व्यापार को जानेगा, ना उनके अभिमानों को जानेगा। तो साक्षी के बिना ना अभिमानी सिद्ध हो सकता है और ना पुरुष सिद्ध हो सकता है। तो जब विवेक करेंगे तब हम ये करेंगे कि मैं जागृत पुरुष नहीं हूं, मैं जागृताभिमानी नहीं हूं, मैं संपूर्ण जागृत पुरुष और अभिमानी और इनके विषयों का साक्षी दृष्टा हूं। यहां से ये वेदांत साधना मांडूक्य की प्रारंभ होती है। ये पहला चरण है। तो चरण जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जहां होते हैं वहां वो जगह छोड़नी पड़ती है ना। तो इस समय हम कहां हैं? पुरुष में है ना। तो पुरुष से आओ अभिमानी में और अभिमानी को छोड़ करके आओ फिर साक्षी में। ऐसे ही फिर स्वप्न का जब विचार करेंगे तब फिर वहां विचार करेंगे। इस साक्षी को जब हम मैं पकड़ में आ जाता है कि जागृत अवस्था का भी साक्षी और स्वप्न अवस्था का भी साक्षी और सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी, महाप्रलय का भी साक्षी, नारायण साक्षी में तो कुछ फर्क हो ही नहीं सकता। क्या दो साक्षी हो सकते हैं? भई आप कहोगे मैं भी साक्षी, मैं कहूंगा मैं भी साक्षी, तो दो साक्षी हो गए। तो एक इनमें से एक ही सच्चा साक्षी होगा, क्योंकि साक्षी यदि दो होंगे तो एक साक्षी होगा दूसरा साक्ष्य होगा, साक्षी का विषय होगा। तो दोनों तो साक्षी नहीं हो सकते। ये बात तो जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ। अब वो जागृत अवस्था में क्या है कि हमारी प्रज्ञा जो है, बुद्धि जो है, वो बाहर की विषयों की ओर होती है। तो कल परसों मैंने बताया कि बुद्धि कहीं निकल के जाती नहीं है, सिर्फ वही उसी में बाहर के विषय प्रतिबिंबित होने लगते हैं। जैसे कांच शीशा जो है वो अपनी जगह पर रखा हुआ ही सब विषयों को अपने में प्रतिबिंबित कर लेता है, वो कोई निकल करके उस ऑब्जेक्ट तक थोड़ी जाता है। तो ये बुद्धि जो है, प्रज्ञा जो है, ये अपने स्थान पर ही रहती है। है ये भौतिक लेकिन रहती अपने स्थान पर ही है, और इंद्रियों के माध्यम से ये संपूर्ण जगत के विषयों को अपने में प्रतिबिंबित कर लेती है। इसको एक अगर हम चित्र अपने मन में बनाना चाहें तो जरा मेरे आप हाथ की तरफ देखिएगा, मुट्ठी बंधी हुई है। अब मुट्ठी खोलो तो थोड़ी खोली और खोलो, पूरी खुल गई। जब पूरी खुल गई तो ये जागृत अवस्था हो गई। अब फिर बंद करो, थोड़ी बंद हुई तो थोड़ा थोड़ा बाहर का भी है, थोड़ा थोड़ा भीतर का भी है, तो ये स्वप्न अवस्था हो गई। اور پھر مٹھی بند ہو گئی. تو باہر کا کٹ, بھیتر کا بھی کٹ, لیکن اس کی ستا تو ہے بدھی کی پرگیا کی, تو وہ یہ سشپتی کی اوستھا ہو گئی. تو بس یہ بدھی ایسے ہی کرتی رہتی ہے, پرارب کے ویگ سے کبھی یہ تھوڑی کھلتی ہے, کبھی یہ زیادہ کھلتی ہے. زیادہ کھلتی ہے تو جاگرت میں چلی جاتی ہے, کم کھلتی ہے تو سپنے میں چلی جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے تو پھر سشپتی میں آ جاتی ہے. اچھا, مٹھی جو ہے یہ بنی ہوئی کس کی ہے؟ اپادان. تو یہ پرگیا بدھی جو ہے اس کا اپادان کارن کیا ہے؟ وہ دماغ بولو کچھ بھی بولو, لیکن گیا جو ہے نا, گیا میں جب پرا اپسرگ لگ گیا تب پرگیا شبد بنے گا نا, استری لنگ میں پرگیا بنے گا نارائن. تو گیا تو پرما آتما کا سوروپ ہے, جو گیان سوروپ ہو اس کو گیا بولتے ہیں. اس میں جب پرا اپسرگ لگ گیا مانے کچھ وشیشتا لگ گئی اس کی, وہ وشیشتا کہاں سے لگ گئی؟ یہی اویدیا کہلاتے. وشیش ہے نہیں گیان سوروپتا میں, لیکن پتا نہیں کیسے, اس کا آپ کارن بتاؤ گے تو وہ کارن بھی متھیا ہی ہوگا. تو انروچنی اویدیا کے کارن اس میں یہ ایک اسفرنا ہو جاتی ہے وشیش, اسی کو پرگیا بولتے ہیں. اب مٹھی بن گئی آپ کی, اب یہ کبھی کھلتی ہے, کبھی آدھی کھلتی ہے, کبھی پوری کھلتی ہے, پھر بند ہو جاتی ہے. یہ پرارب جو ہے بس اس کا کام اتنا ہی ہے, جیسا یہ بھوگ دینا ہوتا ہے ویسی بدھی, اتنی بدھی کھلتی ہے, اس سے زیادہ کب نہیں کھلتی. ستسنگ میں بٹھال تو سکتی ہے, لیکن بدھی پوری کھلی ہوئی دے کے آئے تھے اور یہاں آ کے آدھی ہو گئی, بولے وہاں کیا ہو رہا ہوگا, وہاں کیا ہو رہا ہوگا, اور سوچتے سوچتے پھر سو گئے جا رہے وہیں ستسنگ میں بیٹھے بیٹھے. تو مٹھی تو پھر بند ہو گئی. اس کا یہ پرارب نے تو دیا آپ کو ستسنگ, لیکن جو سیلف ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے یہ آدھی ہو گئی اور بند ہو گئی. اور پرارب صرف پرستھتی اتپن کرتا ہے, کرتتو جو ہے, بھوکتتو جو ہے, یہ اویدیا کے کاریہ ہیں, پرارب کے کاریہ نہیں ہیں. اس لیے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں نا جی ہمارے پرارب میں ہوگا تو گیان ہو جائے گا. پرارب سے تو گیان رک سکتا ہے, ہو نہیں سکتا ہے. گیان تو آپ کے ستسنگ سے ہوگا, آپ کی بدھی بننے سے ہوگا, اور اس میں آپ کو سوئم کا پریتن کرنا پڑے گا. ہو جا تو اسی جیون میں ہو جا, ہو جائے تو ابھی ہو جائے, اور نہیں ہو تو پتا نہیں جانے کتنے جیون لینے پڑے. اسی کے لیے بھگوان نے بول دیا انیک جنم سنسدست ہو جاتا. یہ بھگوان کا ویسا سدھانت وچن نہیں ہے, کیونکہ ارجن کا یہ پرشن تھا کہ مہاراج اس جیون میں اس نے سادھنا کی اور مر گیا, پھل اسے ملا نہیں, تو اس کا آگے کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ شلوک بولا ہے کہ بھائی انیک جنم سنسدھ ستو جاتی پرانگت, لگے رہو انیک جنموں میں سنسدھی ہو جائے گی. لیکن جو تیور سادھن والے ہیں, بھگوان کی کرپا جن کے اوپر ہو رہی ہے, یہ بہت آوشک ہے. مہاراشی کہتے تھے کہ تمہاری تو اچھا ہے اس دنیا سے نکلنے کی, لیکن دنیا تم نے تو بنائی نہیں ہے, تو جس نے یہ دنیا بنائی ہے, تو ان کے شبد بول رہا ہوں, تو بولے اگلے کی بھی تو کچھ اچھا ہونی چاہیے, ایشور کی بھی تو اچھا ہونی چاہیے کہ اس کو چلو یہ نکلنا چاہتا ہے تو اوکے نکل جا بھائی. تو یہ ایشور کرپا ہوتی ہے. तो जिस पर ईश्वर कृपा हो गई और जो अपना स्वयं सद्गुरु सत्शास्त्र और स्वयं के प्रयत्न से सम्मिलित होकर के साधन करता है तो वो निकल भी जाता है। तो जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग, कल आपको बता ही दिया सात अंग, तो शरीर को सात हिस्सों में बांट लो और पूरे विश्व को सात हिस्सों में बांट लो। एकोन विंशति मुख, 19 मुख से आप इस संसार का भोग करते हैं, यही भोग के कारण है आपके पास। और क्या भोग करते हैं जागृत अवस्था में? लड्डू का भोग करते हैं, तो लड्डू स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्थूल वस्तु है ना, लेकिन उसका स्वाद जो है वो स्थूल वस्तु नहीं है, वो तो सूक्ष्म है। किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता है तो वो तो मुंह में ले जाकर थूक देगा उसे, और जिसको मीठा अच्छा लगता है वो कहेगा इसमें मीठा बहुत कम है। राजस्थान में बहुत मीठा खाते हैं, तो स्वामी महेश आनंद जी महाराज ने दिया है कि जोधपुर का कि वहां पर लड्डू परोसे जाते हैं और बिल्कुल करारे के बने हुए, खूब खूब उसमें मीठा रहता है। फिर खाने वाला कहता है और तो सब ठीक है लेकिन मीठा इसमें कम है। कितना भी डाल दो अपने अपने। तो स्थूल भोग, स्थूल विषयों का सेवन जागृत अवस्था में होता है। आप कहो कि नहीं, हमने तो जो है मन से समझ लिया, भोग कर लिया, ये जागृत अवस्था में नहीं हो सकता। जागृत अवस्था में इंद्रियों का भोग स्थूल चाहिए, तभी वो इस विश्व को वैश्वानर को तृप्ति देगा। स्थूल भोग वैश्वानर प्रथम पाद, ये प्रथम पाद है, पहला चरण है, अथवा दूसरा अर्थ भाष्यकार ने किया कि ये प्रसिद्ध पाद है। जागृत अवस्था को सब जानते हैं, प्रसिद्ध के अर्थ में भी प्रथम होता है, इनकी गिनती सबसे पहले है अर्थात प्रसिद्ध है। अब जरा वैश्वानर को फिर एक दफे, क्योंकि ये बात पक्की हो जाएगी तो बाकी अवस्थाओं में इन्हीं चीजों की रिपीटिशन होगी। तो वैश्वानर क्या बताया कि एक शरीर में जो भोगता है स्थूल विषयों का, उसको तो कहते हैं विश्व, और संपूर्ण सृष्टि में जितना भी भोग कर रहा है जो कोई भी, वो जैसे रैक को सबका भोग प्राप्त हो जाता था क्योंकि वो अपने को विराट पुरुष अनुभव करता। विराट पुरुष कौन है? तीन 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 बताए ना अभी, जागृत पुरुष, जागृत अभिमानी और जागृत साक्षी। तो जो अपने को संपूर्ण सृष्टि का अभिमानी मानेगा उसको विराट बोलते हैं। तो उसकी यही साधना थी कि मैं विराट हूं, तो उसे कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ जिसको प्राप्त हो रहा है वो उसी को प्राप्त हो रहा है, विराट कुछ नहीं करता। और ये एक एक शरीर में जो कर्ता बना बैठा है ना, ये उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है विराट का, ये सूचक है कि कोई व्यापक कर्ता भी है, कोई व्यापक भोक्ता भी है। व्यापक भोक्ता को हिरण्यगर्भ बोलते हैं और व्यापक कर्ता को विराट बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स भी आपको समझनी पड़ती हैं क्योंकि ये विद्या है। अब कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहे और बोले हमें तो बोलचाल की भाषा में समझा दो, अरे तो डॉक्टरी नहीं समझ में आ सकती बोलचाल की भाषा, वहां तो हर चीज के पारिभाषिक नाम है। तो सरल तरीके से पारिभाषिक नाम को समझ लो, बस ये बात। तो पहला चरण क्या है कि मैं विराट हूं, पहले मैं पुरुष हूं, ये तो हमारा सामान्य अनुभव है। फिर मैं जागृत अभिमानी हूं, ये उससे श्रेष्ठ अनुभव है। और फिर मैं विराट हूं, ये सत्य के अधिक अनुभव है। यहां तक पहुंचाता है ये पहला चरण। अब इससे अगला मंत्र चालू होता है, स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविव्यक्त भोक् तैजसो द्वितीय पाद। वैसे एक नंबर अच्छा होता है कि दो नंबर अच्छा होता है? अब बिजनेस में तो नारायण दो नंबर का पैसा चाहिए सबको। तो हमारे एक मित्र थे, बिजनेसमैन थे, तो वो कहते थे ये सब गाली क्यों देते हो हमको, दो नंबर का पैसा कोई नोट हम छापते हैं? नोट तो वही होते दो नंबर दो नंबर। अरे एक ही नोट है, उसे चाहे एक नंबर बोलो चाहे दो नंबर बोलो। तो नंबर तो सब अपने हिसाब से है ना, जिसको आप छिपा के रखते हो वो दो नंबर हो जाता है। काम तो दोनों बराबर करते हैं, एक नंबर का भी वही काम करेगा, दो नंबर का भी वही काम करेगा। एक को छिपाना चाहते एक को जगर है। तो ये छिपा करके ये द्वितीय पाद है, दो नंबर का है। जागृत तो सबको दिखती है, सबकी जागृत सबको दिखती है, लेकिन सबके सपने सबको नहीं दिखते। अपना सपना अपने को ही दिखता है। एक दफा महाराज श्री साहब ने कहा, महाराज जी कुछ पांच मिनट आपसे अकेले में बात करती है। तो बोले देखो, परमात्मा के बारे में कुछ बात करनी हो तो उजागर करो, उसमें कुछ छिपाना नहीं। और अगर अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई बात हो तो कह सकते हो कि आपसे हम अकेले में बात करें, क्योंकि सब बातें सबको बताने की नहीं होती है। मन के बात तो है, व्यक्तिगत भी है और परमात्मा संबंध साधन संबंधी जो बात है वो परमात्मा संबंध भी है और व्यक्तिगत भी है। अगर मान लो लोग ये जान जाएं कि भाई ये साधन में बहुत कमजोर है, तो आपको ये लगता है कि नहीं, हम चाहें तो कमजोर लेकिन दुनिया हमको श्रेष्ठ माने, तो आप तो हिपोक्रेट हो ना। अरे जो हो वही दिखो, इसमें ज्यादा दिखाने की जरूरत क्या है, समझेंगे समझ लेंगे। तो फिर बोले, हंस के बोले कि हमारे पास लोग आते हैं तो किसी दिन झूठ मूठ को भी सपने में भगवान के दर्शन हो गए तो उसको सबके सामने बताएंगे, महाराज आज तो हमें राम जी के दर्शन हुए। और अगर रात को कोई खराब सपना आ गया तो उसे चुपके से किसी के सामने बताएंगे नहीं, और हमको भी कान में जाकर बताएंगे। तो ये नंबर द्वितीय पाद है, दो नंबर का है, लेकिन ये एक के बाद दो जो आता है उसका अर्थ में है, माने एक से आगे। अब जागृत मैं विराट हूं, यहां तक तो पहुंच गए। अच्छा, विराट का शरीर क्या होता है? तो ये संपूर्ण विश्व जो दिख रहा है ये विराट का शरीर है। तो आप ऐसे ही अपना नाम विराट मत रख लेना। हमारे एक नगर में रहते थे तो बड़े मोटे थे वो, तो लोग उन्हें विराट जी बोलते थे, उसी नाम से मशहूर थे। तो विराट माने कितना बड़ा? अरे संपूर्ण विश्व जिसका शरीर है उतना बड़ा, इसकी तो कोई आपके पास सीमा ही नहीं है। तो अनंत प्राय है उसका शरीर, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अर्जुन को जो भगवान ने 11वें अध्याय में अपना स्वरूप विराट का दिखाया है, वो विराट दर्शन ही तो है ना, तो उसमें मृत्यु भी दिखाई है, जीवन भी दिखाया है। तो जब आप समष्टि विचार करते हो तो छोटी छोटी समस्याओं से हट जाते। कितने आदमी ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा दुखी हैं, लेकिन अपना छोटा सा दुख भी बहुत हमको सताता रहता है। जब समष्टि का विचार करोगे, समष्टि मेरा शरीर है, नारायण, इसमें दोनों बात है। जिनमें लोक संग्रह की वासना होती है वो कहते हैं समष्टि मेरा शरीर है तो मैं गरीबों की सेवा करूं, क्योंकि वो मेरे शरीर में है गरीब, तो तुम्हारे शरीर में तो अमीर भी है नारायण। तो जैसी जिसकी वासना है, और जो विरक्त टाइप का होगा वो कहेगा गरीब भी हैं अमीर भी हैं, सब में मैं ही तो विराजमान हूं। जो सब में रहता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो निष्क्रिय तत्व रहता है। तो कॉरोलरीज सबकी अलग-अलग अलहदा है, अंतःकरण की बनावट के ऊपर निर्भर करता है। तो अब दूसरा के अर्थ चालू कर रहे हैं। स्वप्न स्थान, स्वप्न है स्थान जिसका, फिर यहां वही तीन विभाग कर लो, स्वप्न पुरुष, स्वप्न स्वप्नाभिमानी और स्वप्न दृष्टा। तो यहां स्वप्न स्थान जो है अभिमानी के लिए, स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञ, इसकी प्रज्ञा जो है वो अंत है, भीतर की ओर है, मुट्ठी पूरी खुली पूरी नहीं खुली है। अंत प्रज्ञ प्रज्ञ इस प्रज्ञा जो है इसकी भीतर की ओर है। तो ये स्वप्न क्यों बोलते हैं इसको, बोले अर्ध जागृत अवस्था है, पूरी तरह से सोए भी नहीं है और पूरी तरह से जगे भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था तो जागृत में भी हो जाती है, मनोराज्य की जो अवस्था है, सोचते 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 जाने कहां कौन जाते, फिर झटका लगता है अरे कहां पहुंच गए। तो ये मनोराज्य स्वप्न और भक्ति में जो भाव राज्य है वो, यद्यपि इनके फल सबके अलहदा अलहदा है, भाव राज्य जो है वो सात्विक है और ये जो नींद वाला है ये तामस है, और मनोराज्य जो है ये राजस है। तो इनके फल भी सबके अलहदा अलहदा है, लेकिन विचार की दृष्टि से तीनों एक ही कक्षा की है। तो इसमें प्रज्ञा जो है, जब आधा सो गया मन अंतःकरण और आधा जगा हुआ है, तो जो पहले जगा हुआ हिस्सा था, मैंने पूरा हाथ खुला और फिर बंद हुआ, तो वो बाहर से जो संस्कार लेकर के आया भीतर की ओर, तो वो जो हमारा अंतःकरण का पर्दा है उसके ऊपर वो बाहर के चित्र जो है वो छप जाते हैं। उसमें कुछ भीतर की वासनाओं से भी छपा ही रहता है पहले से ही, वो छोटी छोटी पहले छींटें आती थी कपड़े, आजकल तो पता नहीं आती हैं कि नहीं, छींट बोलते थे, बहुत बारीक 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 बारीक, तो ये छींट वाला अंतःकरण तो सबका ही होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो पुनर्जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। जन्म देता है तो छींट को लेकर के ही होता है, अनंत संस्कार इसमें भरे रहते हैं। तो छींट वाला तो ये रहता ही है। अब बाहर को लेकर के जागृत अवस्था से जब ये भीतर की ओर आया तो कुछ प्रेडोमिनेंट जागृत के जो संस्कार हैं वो जाकर के वो फिर और बड़े बड़े चापे लग जाते हैं। अब वही दिखने लगते हैं, उसी को सपना बोलते हैं। स्वप माने सोना, निद्रा। तो पूरा सोया भी नहीं है और पूरा जगा भी नहीं। अब जैसे अपन लोग बैठे हैं यहां सब, तो हम सपने ही देखते हैं ज्यादातर साधक लोग जो हैं, क्योंकि पूरे जगह भी नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी स्थित प्रज्ञ हो जाते तो हम तो जगे हुए कहलाते। अभी तो सोए भी नहीं है पूरे और पूरे जगे भी नहीं है, तो सब सपने में ही है। देखा ही सपन अनेक प्रकार नारायण। जब ये सपना देखना बंद हो, ये भौतिक सपना देखना बंद नहीं होगा, चाहे ज्ञानी हो जाओ चाहे कुछ योगी हो जाओ, क्योंकि ये पूर्व जन्म का जो रंगा हुआ अंतःकरण लाए हैं वो छोटी छोटी छींट तो आपको सपने में जरूर आएगी। हाँ, बाहर से चूंकि आपने संयम कर लिया है तो बड़े बड़े छापे जो उस पर लग गए थे वो छापे आपको नहीं मालूम पड़ेंगे, लेकिन कुछ तो मालूम पड़ता रहेगा। बोले जी, हमने सपने में देखा। क्या देखा भाई? कि एक हाथी है। अच्छा ठीक है, हाथी आपने जागृत में देखा है। बोले उसके सींग है। हाथी के तो सींग होते नहीं, ये कहां से आ गया आपको? अरे बोले सींग वाला पशु देखा है आपने, तो एक छापा पड़ा हाथी का और तुरंत ही उसके ऊपर दूसरा छापा पड़ा सांड का, समझ लो। तो सांड का भी भारी शरीर होता है, हाथी का भी भारी शरीर होता है, वो तो शरीर शरीर आपस में मिल उसके सींग उसके ऊपर लग गए। ये आज के मनोवैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि ये ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि क्षण क्षण में वृत्ति बदलती है। कभी लगता है स्वर्ग में पहुंच गए, कभी लगता है नरक में पहुंच गए। ना स्वर्ग देखा ना नरक देखा, पढ़ पढ़ के ही स्वर्ग और नरक की कल्पना कर ली है, वही कल्पना उनके ऊपर चलती जाती है। तो कुछ देखे हुए का कुछ सुने हुए का, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरश्यति तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुना हुआ और देखा हुआ, स्वर्ग जो है ये केवल सुना हुआ, देखा नहीं है। और लौकिक के जो सुख हैं ये देखे हुए भी हैं और सुने हुए भी हैं। बोले अंबानी के मकान में क्या होता होगा? अब भीतर तो कोई गया नहीं है, सब बाहर से ही अनुमान कर रहे हैं। तो अपनी वासना जो है उसके साथ मिल जाती है। तो ओवरलैपिंग हो जाने के कारण विचित्र विचित्र स्वप्न जो है वो मनुष्य को दिखाई देते हैं। इससे वो लोग पुनर्जन्म की सिद्धि करते हैं, ये तार्किक दृष्टि से गलत है। स्वप्न से पुनर्जन्म की सिद्धि नहीं होती। स्वप्न स्थानो अंतःप्रज्ञ, वो भीतर की ओर मुड़ गई है प्रज्ञा, आधी चौथाई है। सप्तांग, अब मैं तो वही हूं जो जागने वाला था, इसलिए सात अंग जो मेरे जागृत अवस्था में थे वो तो अपनी जगह पे विराजमान ही है। लेकिन अब जरा समष्टि में विचार करो, विराट की उत्पत्ति ऐसा समझो जैसा हमारा स्थूल शरीर है ना, तो स्थूल शरीर है और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और इसके भीतर कारण शरीर है। ऐसे ये संपूर्ण विश्व सृष्टि जो है ये स्थूल शरीर है, इसका अभिमानी कौन है? विराट। और इस संपूर्ण स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसका अभिमानी कौन है? कि हिरण्यगर्भ। और उसके भीतर एक कारण शरीर है, उसका अभिमानी कौन है? कि ईश्वर। ये समष्टि में। और यहां क्या है कि जागृत में स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व और इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसका अभिमानी तेजस नाम है, और इसके भीतर जो कारण शरीर है उसका अभिमानी प्राज्ञ या जीव बोल दो। अच्छा, अब वहां भी भोग होता है सपने में भी, तो उसके कारण क्या है कि एको नविंशति मुखा, जो जागृत के कारण थे वही स्वप्न के कारण रहते हैं। ये आंख का गोलक तो बंद हो जाता है सपना के टाइम में, बाहर की आंख का गोलक तो बंद हो जाता है, तो बाहर की चीजें तो नहीं दिखती, लेकिन वो नेत्रेंद्रिय जो है वो चूंकि मन के साथ संयुक्त रहती है इसलिए वो तो जगी रहती है। तो यहां बाहर से ले लेकर के अनुभव में लाती है, और वहां पहले अनुभव किए हुओं को मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं वो नेत्रेंद्रिय उनको रूप प्रदान कर देती है, इसीलिए वहां गड्ढे रूप होते हैं और सपाट नहीं होते। यहां तो आप एक आदमी को देख लो तो 50 वर्ष बाद भी पहचान लोगे कि हाँ ये वही आदमी है, लेकिन सपने का एक क्षण बाद भी यदि उसी आदमी को सपने में देखो तो नहीं पहचान सकते। एकोनविंशति मुखा, अब ये बौद्धों ने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उन्होंने कह दिया दुनिया सब सपना है। तो दुनिया सपना नहीं, जागृत अवस्था सपना है नारायण, तो ऐसा नहीं है। वो जहां से बोलते हैं वहां पर तो ऐसा ही दिखता है, बुद्ध तो अपने अल्टीमेट स्टेज में बैठ कर बोलते हैं, लेकिन बोल किन को रहे हैं? जो बिल्कुल धरातल पर हैं जमीन पर, उनको तो नहीं दिखेगा। इसलिए अपने यहां सनातन धर्म जो वेदांत है वो कहता है कि भाई ये दुनिया जो है ये सपना नहीं है, ये स्वप्नवत मिथ्या है, स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे सपना टूटते ही वहां की दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसे यहां का एक दृश्य हटा सब टूट गया। अच्छा, कितने आदमी आपके जीवन में आए अब तक, याद है सब? अरे कल क्या खाया था? ये भी याद नहीं है। तो क्या क्या मतलब स्वप्नवत ही है ना ये, आया गया आया गया आया गया। बोले नहीं, ये तो कोई आदमी है जिसको हमने 20 बरस पहले देखा था। तो बोले भाई साहब आप वही आदमी हो ना? बोले नहीं, तो मैं तो वो बेटा बनारसी ने कविता लिखी ना, धोखा हो ही गया, हो ही गवा। धोखा बनारसी टोन में लिखा, धोखा हो ही गवा। तो थी वो लड़की, कपड़े उसने पहन रखे थे लड़के के, अब उसने कहा ये लड़का तो वो है जो हमारे साथ पढ़ता था, जाके उसके पीछे हाथ मारा, कहा भाई यहां घूम रहा है? धोखा हो ही गवा। तो ये सब ऐसे ही है, सेंट परसेंट सिमिलरिटी नहीं होती है। अपना ही फोटो देख लो, दूसरे की क्या बात है। अब बचपन का फोटो एक हमारे पास था, तो हमारी माता श्री बोलती थी कि ये तू है। अच्छा भाई, ऐसा था क्या? अभी कल एक साहब कह रहे थे कि इंटरनेट पे हमने आपका प्रवचन सुना, मगर जो उसमें फोटो आपका आता है वो तो वो नहीं है जो आप इस समय हो, बल्कि वो तो पुराना फोटो है भाई। तो फोटो फोटो इसे ही नहीं पहचान पाते, अपना ही फोटो नहीं पहचान पाते। तो स्वप्नवत है, स्वप्नवत मिथ्या। प्रविवेक्त भोग, अब यहां भोग किन चीजों का होता है? दाल भात तो छोड़ के आ गए हम जागृत अवस्था के। राजा जनक राजा हैं, लेकिन सपने में खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी भी वो खा नहीं पाते। तो कथा सुनी है ना हमने, तो अब क्या कहो? बोले राजा जनक का प्रारब्ध ही ऐसा था। अरे प्रारब्ध प्रारब्ध वहां सपने में कहां से आया भाई? तो प्रविविक्त भोग, विविक्त माने जागृत अवस्था से बिल्कुल अलग भोगों का भोग, अर्थात सूक्ष्म भोगों का भोग वहां करते हैं, स्थूल भोग नहीं है। लेकिन ऐसे भोग भी हैं कि उनका परिणाम स्थूल होता है। स्त्री प्रसंग आदि के जब दृश्य आ जाते हैं तो पुरुषों को मालूम है कि उसका परिणाम स्पष्ट हो जाता है। तो नारायण ये ऐसा नहीं है कि नितांत भिन्न अवस्था हो स्वप्न जो है, जुड़ा तो रहता है जागृत से, क्योंकि मुट्ठी अभी पूरी बंद हुई नहीं है, आधी खुली है। प्रविवेक्त भोग तैजसो द्वितीय पाद, इसका नाम तैजस है। समय तो हो गया, तो तेजस शब्द का अर्थ कल बताएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः।